इसके बाद आप देखिए औरत और मर्द की बांट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, औरत और मर्द के हकूक, ये बड़े खूबसूरत पैट जुमले हैं आज के वेस्ट के कल्चर के। तो आपको इंशाल्लाह इन सब को पढ़ने के दौरान एहसास होगा कि इस्लाम ने कितने खूबसूरत तरीके से इस इशू को टैकल किया है। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया इसके मुताबिक इनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है इसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। इब्ने अब्बास कहते हैं इस आयत के मुतल्लिक कि इससे मुराद है कि कोई औरत ये ना कहे कि मैं मर्द होता। और इसी तरह से आप देखिए कि इंसानों की इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिली हुई हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने आपके मेरे लिए मुख्तलिफ चीज़ों को रखा है ताकि हम दुनिया के काम करें। ना औरत आला है ना मर्द घटिया है, ना मर्द आला है ना औरत घटिया है। अल्लाह तआला ने ज़रूरत के मुताबिक सबको जो काम दिए हैं करिए। क्या आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, नमाजों में सब बराबरी है, नेकियां कीजिए। जन्नत में अल्लाह ने कोई दो फ्लोर नहीं रखे हुए कि दिस इज फॉर मैन एंड दिस इज फॉर वुमेन, और ऊपर के 50 फ्लोर जो है आला ग्रेड जो है वो मर्दों के और नीचे के 50 ग्रेड औरतों के, सबको मिल जाता है। असल बात यह है कि जिसको आगे निकलना होता है वो कभी तकाबुल नहीं करता। और अगर इस आयत को अगर आप दूसरे एंगल से भी देख लीजिए ना, तो जिंदगी में आप कभी किसी को अपने से आला देखें, किसी में खूबी है आप में नहीं है, कोशिश भी करें तो आप में नहीं आनी, तो आप क्या करें, अपनी हॉबी ढूंढें, अपना टैलेंट ढूंढें, उसमें आगे बढ़ जाएं। वरना हसद होगा, जेलसी होगी, और जो आप में थोड़ी बहुत की खूबी है ना आप उसको भी जाया कर देंगे। अब इसके बाद विरासत की बात है थोड़ी सी। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े, अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहद पैमान हो, तो इनको इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। शुरू में विरासत के अहकाम नहीं थे तो ये एक बीच की आयत थी कि अपनी सवाबदीद से, अपनी अकल और समझ से दूसरों को हिस्सा दे दो। ये आयत जो आयत 34 है ये बड़ी अहम आयत है इक्वलिटी के नाम पर। इसको अगर आप समझना चाहें कि औरतों और मर्दों की क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या उनके राइट्स हैं, इंशाल्लाह इसको इकट्ठा कोशिश करके पढ़ के तो फिर बात करते हैं। अर्रिजालु कव्वामून अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो सवाले औरतें हैं वो इताचार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो इन्हें खूब समझाओ, ख्वाब गाहों में इनसे अलहदा रहो और मारो, फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाए तो ख्वाम खा इन पर दस्तराजी के लिए बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और वाला तर है, और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो, वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मुवाफ़क़त की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता है और बाखबर है। एक आयत है और पूरे घराने का सुकून है। पहली चीज़ आप देखिए कि इसमें मर्द को कव्वाम कहा गया। कव्वाम किसको कहते हैं? टेक केयरर, जिम्मेदार। जैसे अभी मैंने पीछे तस्करा किया, शादी की सूरत में एक मर्द ही हर घर के खर्चे को और हर काम को करने का अहल होता है, उसको करना होता है। मुंतसिम, मैनेजर कह लीजिए, मुदब्बिर, मुकफ्फिल। अब एक मर्द को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, क्यों है? उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, इसमें मर्द की जिस्मानी स्ट्रांगनेस है। आप देखिए मर्द मजबूत होते हैं, वजन उठा लेते हैं, मर्द ज्यादा चल लेते हैं, जज्बाती तौर पे मर्द स्ट्रांग होता है। खुदा न खासा घर में रात को चोर आ जाए तो कौन सामने जाता है? मर्द जाता है। चूहा निकला है कौन मारता है? काकरोच निकला है कौन मारता है? मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए, मर्द की ये खूबी है कि उसके अंदर स्ट्रांग हो। और वल्ला ही देखा जाए तो जो अच्छे मर्द हैं वो वाकई इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अब एक मर्द ये काम करता है, दूसरी चीज देखिए, वह बीमान फकुमिनम वाली है। इस पे तो हमें अपने मर्दों पर प्यार आना ही चाहिए। यह अलग बात है कि अब हमने अपने लाइफस्टाइल में ये चूज कर लिया कि नहीं हम भी कमा लेंगे, लेकिन इस्लाम ने घर चलाने की या माली मामलात की जिम्मेदारी सारी की सारी मर्द पर डाली है। आप मत सोचिए कि हमारे आपके मर्द जो माशाल्लाह ऑफिसेज में बैठे हुए बेहतरीन एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हुए जाते हैं और कमा के ले आते हैं, ऐसे तो कम ही होंगे। आपने कभी पाकिस्तान में गरीब मर्दों को काम करते देखा है? सड़कें बनाने में लोग देखे? कभी आपने सड़कें धूप में कूटते हुए पसीना भी उनका अंदर गिर रहा होता उनको देखा? कभी गाड़ियों के टायर बदलते हुए लोग मैकेनिक वर्कशॉप में काले स्याह बने हुए कपड़े भी गंदे देखे? कभी आपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेहड़ियों पे इतना वजन उठाते देखा? ये है मर्द की बुजुर्गी। दुनिया में कोई इंसान ये किसी के दिल में जज्बा डाल ही नहीं सकता था कि तुम अपने सारे दिन की मेहनत कमाई करो और जाके अपनी बेगम के हाथ पे रख दो। अमूमी तौर पे मर्दों के क्या खर्चे होते हैं, आप आजमा के देख लीजिए। मर्द का खर्चा औरत से कम है। दो चार उनको जोड़े चाहिए होते हैं, कोई एक जूता चाहिए, गाड़ी का पेट्रोल चाहिए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई उनकी सोशलाइजिंग होगी तो बड़ा हफ्ते महीने में एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खा लेंगे। खर्चा कौन करता है? घर में जितना खर्चा आता है उसको कौन जाके खर्च करता है? औरत करती है। औरत तो रानी है, अल्लाह ने इस्लाम ने औरत को मलका बना दिया, प्रिंसेस है, शहजादी है घर की। एक मर्द कमा खिला के देता, अब घर आए तो औरत का मिजाज बिगड़ा हुआ। पहले ही वो दज्जली कुटी है, उसको बच्चों का ही रोना नहीं भूल रहा, ये तंग करता है वो करता है। कहाँ वो जो मेहनत करके आया अल्लाह का बंदा, और कहाँ आप घर में एक दो बच्चों को पाल रही थी, अब शाम को उसका भी जीना धोबर करती हैं। इसलिए फिर औरत को खूबियां, सालेहात, कानितात, हाफिजात, तीन चीजें औरत कर ले, सालेहा बने। उसकी सोच पाक, क्लीन क्लियर, बिल्कुल ऐसी साफ सुथरी औरत कि जिसको देखकर शौहर को प्यार आए। हदीस में आता है कि एक औरत जिसका शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए और शौहर की बात माने, अपने फराइज पूरे करे, जन्नत के जिस दरवाजे में से चली जाए। अब आप जरा सा समझिए, ये भी मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। अगर मर्द कवाम है और वाकई पीछे जितने कानून पड़ चुके हैं उनकी नजरें भी पाक हैं और उन्होंने रिस्क हलाल का एहतमाम भी किया हुआ है, अब ऐसा मर्द जो अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह के हुक्मों पे चलता है, उसको आप राजी कर लें, आपको जन्नत मिल जाएगी। मगर अगर मर्द ही बिगड़ा हुआ है, अगर मर्द ही शराबी कबाब भी है, वही नमाजी नहीं, वही औरत के पर्दे हिजाब खींचता है, वही औरत को जबरदस्ती गलत जगहों पर ले जाता है, अब आप उसको खुश करके जन्नत में जा सकती हैं? ये जो हमारे यहाँ मिसअंडरस्टूड बात है ना जी, शौहर मजाजी खुदा, कोई मजाजी खुदा नहीं, ये तो आपने खुद ही शिर्क का दरवाजा खोल दिया। खुदा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा आइडियल फॉर्मेशन के मर्द पाक, जिम्मेदारियों को अदा करने वाले, कवाम भी हैं और रिस्क कमा रहे हैं। औरत को फिर ऐसे मर्द के आगे वाकई झुकना चाहिए। औरत के मिजाज में नरमी, अल्लाह ने औरत को एक छोटे से घर में दो चार बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी देकर बहुत दे दिया, वो यही काम कर ले तो बहुत अच्छा है। जो औरतें बाहर के काम करती हैं, अगर वो इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, एक्टिव हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो अपने घर की ये सारी चीजें मैनेज करके फिर भी जॉब कर रही हैं, वेल एंड गुड, दे कैन डू इट। इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि जैसे अल्लाह ने उनको एक तोहफा दिया था घर में बैठ के खाने का, उन्होंने अगर उसको नहीं लिया तो इट्स ओके, वो कर सकती है। मजबूरियों में हालात बिगड़ जाते हैं, शौहर हैंडीकैप हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, औरतें काम करती हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो काम करने में औरत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हदों को पामाल ना करें, शरई हदूद ना टूटे, औरत मर्द की मिक्सिंग ना हो। औरत ने अगर काम करना है तो दी बेस्ट काम उसके लिए टीचिंग है या बच्चों की परवरिश। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, डे केयर्स में जाएं, घर में कैटरिंग कर लें, घर में बेबी सिटिंग कर लें, ये इस औरत के लिए बेहतरीन चीज होगी। लेकिन जो चीज इसमें मुझे और आपको मिल रही है वो है कि अपना मिजाज नहीं बिगाड़ना। अच्छी औरतें अपने शौहरों से नहीं लड़ती, नाराज नहीं होती, बात बात पे रूठ नहीं जाती, ताने नहीं देती, तुम्हारे घर में मैंने ये नहीं पाया, वो नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं तो बहुत ही बोलती हूँ, मेरे ऊपर तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो शायद सच्ची हो कि आप मर्दों की बहुत साइड लेती हैं। तो मैं कहती शुक्र है मैं औरत हूँ, और शुक्र है अल्लाह सलामत रखे मैं बीवी भी हूँ। मैं जो बातें कहती हूँ मैं आपको अल्लाह की कसम एक एक लफ्ज अपने ऊपर लेकर कहती हूँ। बहनों को कभी ऐसी कोई बात नहीं कहती जो मैं ना कर सकूँ, वो बात मान के आती हूँ जो मैं आपको मनवाने की दावत देती हूँ। तो लिहाजा अपने मिजाज को नरम करें। औरत में दो खूबियाँ आ जाएं अगर, शुक्रगुजारी, अल्लाह ने मुझे शौहर दिया, अगर ये मुझसे शादी ना करते मैं बैठी रहती, कब से बैठी हुई थी, अल्लाह ने मुझे घर वाला दे दिया, अल्लाह ने मेरे लिए इस बंदे को इतना मुसख़र कर दिया, ये अपनी सारी कमाई मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जो मैं पकाती हूँ ये खा लेते हैं, जो कपड़े मैं इनको देती हूँ ये पहन लेते हैं, इससे अच्छा मुसख़र और कौन होगा आपके लिए। तो लिहाजा मिजाज को अच्छा रखें, खुश शुक्र गुजार हो। और दूसरी बात है कि आप अपने मर्द की केयर करने वाली हो। वो औरतें जिनको मर्द के कपड़ों की फिक्र नहीं, खाने की फिक्र नहीं, उनकी खुशी का ख्याल नहीं, याद रखिए फिर वो बीवी नहीं है, वो फिर दुख सुख की साथी नहीं है, वो बेटर हाफ है कि बेटर हाफ है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम अपने घरों में ये सुकून पैदा कर लें, यकीन करें बाहर दुनिया में हम बहुत काम करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। फिर इसमें हमने बिगड़ी हुई औरत को सुधारने का तरीका भी पढ़ लिया, अगर आपने गौर किया, कुछ लोगों ने सारी आयत को छोड़ के लस वद्रिबू हुन्ना को हाईलाइट किया होगा, देखो इस्लाम कहता है मारो इनको। देखिए सूरत बकरा से लेके आज तक आप औरतों के हकूक पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं ना, और अब यहाँ एक लफ्ज, पूरी आयत भी नहीं, आयत का एक टुकड़ा, मॉडर्न लोग जो दहन के ऊपर एंटी इस्लामिक सोच रखते हैं वो कहते हैं देखो जी इस्लाम कहते हैं मारो इनको, और सारे मारते ही सिर्फ कुरान की आयत नंबर 23 पढ़ के हैं या 24 है। औरत तो हर जगह मारी जाती थी, ये एक पूरा इशू है जिसपे मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता एक भी लफ्ज बोलूं, क्योंकि मैंने नहीं कभी किसी औरत को मार खाते देखा। मैं आप सबसे भी पूछती हूँ, माशाल्लाह 1000 औरत को तो आप भी जानती होंगी ना, खानदान की, पाकिस्तान की, इंडिया की, यहाँ की, जिनको आप जानती हैं, किस किस औरत को मार पड़ती है? अल्लाह का शुक्र है ना हमारी खाला को पड़ती है, ना फुफ्फो को पड़ती है, ना मामी को पड़ती है, ना चची को पड़ती है, ना बहन को पड़ती है। मैंने तो नहीं देखा किसी को पड़ते हुए। कभी सुना होगा वो फला मासी या उसके भैया ने उसको कूटा, वो अफीम मांगता है या चर्स पीता है और उससे पैसे मांगता है, वो 100 में 1 है। आप जाके पढ़िए अमेरिका में, सिर्फ फिगर कीजिए हाउ मैनी वुमेन, कितनी औरतों को मार पड़ती है, एक गूगल में सर्च दें, आपको हर साल हर शहर का दिन लगा के दिखाएगा, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आप बंद कर देंगे। आज औरतें मॉडर्न दुनिया में ज्यादा पिसती हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में दो मखलूकात बहुत मजबूर हैं, एक औरत और एक बच्चे। आज जो स्टाइल, जो सोच दी गई दुनिया को, उसमें औरत पिस रही है, माँ भी बनती है, घर की कमासी भी है, कुक भी है, और साथ वो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के जॉब भी कर रही है, घर के खर्चे भी चला रही है। और दूसरी जो मजलूम हस्ती है आज की सोसाइटी की, वो हमारे ये मासूम बच्चे हैं कि जिनको माएँ डे केयर्स में और बेबी सिटर्स के पास छोड़ छोड़ कर जाके और पैसे कमाने जाती हैं और वो मासूम पड़े रहते हैं। अपने औरत होने पे फख्र करें, अपने माँ बनने पे फख्र करें, अपने बीवी होने पे फख्र करें, फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना वक्त है, कितना सुकून है। वरना आप अपने, मैं अपनी जहन में छोटी सोच में ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, तो हमारे अपने काम भी ठीक नहीं होते। अल्लाह ताला हमें अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 36 में अब दोबारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीन इस्लाम के मुख्तलिफ अहकाम का खुलासा है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, किराबतदारों और यतीमों और मिसकीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, और पड़ोसी और रिश्तेदार से, अजनबी हमसाए से, पहलू के साथी और मुसाफिर से, और इन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जे में हो, एहसान का मामला रखो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता, किसको, जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फख्र करे। फरमाया ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हिदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इनको दिया है इसे छुपाते हैं। ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वा को नजाब मुहैया कर रखा है, और वो लोग भी अल्लाह को ना पसंद है जो अपने माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, और दर हकीकत न अल्लाह पर ईमान रखते हैं न रोज़े आखिर पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बड़ी ही बुरी रिफाकत मुयसर आई, आखिर इन लोगों पर क्या फता जाती अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसमें से खर्च करते। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से इनकी नेकी का हाल छुपा न रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे, जरा इमेजिनेशन में लाइए, कोई एक नेकी अपनी जो आपने बड़े मुश्किल हालात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की, नामुमकिन थी, मुश्किल थी, लेकिन आपने कर ली, फरमाया होगा क्या, वह इन तक हसनतुन असीमा। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह इसे दुगना करता है और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर भी अता फरमाता है। फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और इसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे काश जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, वहां ये अपनी कोई बात अल्लाह से छुपा ना सकेंगे। इमेजिनेशन में लाइए, आप देखिए इस पूरे लेसन में हमने दीन इस्लाम की बेसिक चीज़ों को देखा, शिर्क से लेकर इंसानी मामला जिसमें बुखल है, जिसमें मुलाजमों के साथ अच्छी बात करने की बात है। आप देखिए कि वाकई अगर हम वैसे बन जाएं जैसे अल्लाह ताला हमें बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कि इस दुनिया में भी सुकून होगा, आखिरत में भी होगा। किस तरह से अल्लाह ताला आपके मेरे लिए ये चीज़ें सामने लाते हैं, और कुरान पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि इंसान को अपनी इस्लाह समझ आती है, इस्लाह करने का मौका भी मिल जाता है, और असल बात यह है कि जितना ज़्यादा मैं और आप इन चीज़ों पर अमल करते जाएंगे, अल्लाह सुबहान तआला उतना हमारे लिए इसको मानना आसान करेगा। अब अगली आयत बड़ी अहम है, नोट कर लीजिए, हुर्मते शराब में दूसरी आयत। पीछे याद है आपको सूरत बकरा में एक आयत पढ़ चुके हैं हम सेकंड पारे में कि यसअलूना कानिल हमरी वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं, यानी ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो कहा कि इसका फ़ायदा थोड़ा है और इसका नुकसान ज़्यादा है, थोड़ी सी जहन साजी कर दी। अब हुआ क्या कि जो फितरत सलीमा पे लोग थे, जिसको आप कह लीजिए जो इशारा समझते हैं, जिनके दिलों में वाकई फितरी तौर पर गुनाह का इतना रुझान नहीं होता, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। लेकिन कुछ ने कहा कि ठीक है, अल्लाह ने ये तो निकाह ना करो, पीते रहे। अब हुआ क्या, एक ऐसा मौका आया कि एक महफिल बरपा थी, सहाबे कराम उसमें मौजूद थे, शराब पी। अब जब शराब पी तो इतने में नमाज का वक्त आ गया। जरा गौर से सुनिएगा, वो क्या मोहब्बत थी रब की कि शराब के नशे में भी नमाज नहीं छोड़ते थे। चलो जी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आज शराब ना भी हो तो महफिलों में कहते नमाज पढ़े, इधर घर जाके पढ़ लेंगे, अल्लाह में हिदायत है। वो सहाबी ने नमाज पढ़ानी शुरू की, शराब का नशा कुछ ऐसा जहन पे आ गया कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून को थोड़ा बदल के क्या कह दिया, ओ मुशरिको हम भी उसी की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। बहुत बड़ा हर्फ आ गया अकीदे पे। अल्लाह ताला ने यह आयत उतार दी जो अब हम पढ़ने लगे हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। लोग कहते हैं ठीक है, नशे में नहीं पढ़ते, वैसे पढ़ लेंगे। लेकिन वजह, अब ये अगला जुमला मेरे आपके लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना शराब पीते हैं ना चखते हैं ना कभी किसी को पीता देखा आज तक, उनको क्या हुक्म है। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। रुकिए जरा, आज का हमारा पारा जो ये नमाज पे बेस्ड है, नमाज नमाज नमाज, ये नमाज ही है जिसने सहाबा को सीधा रखा हुआ था। शराब पी हुई है फिर भी नमाज नहीं भूल रहे, जब शराब पी कर नमाज पढ़नी, उनको ये तस्वुर भी नहीं था कभी कि हम नमाज छोड़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अब पार्टी में हमें नमाज पढ़े, शादी में नमाज पढ़े। दूसरी बात है कि इस हुक्म की इल्लत कि समझ नहीं आता हम क्या पढ़े। अब एक सवाल है, सोल सर्चिंग, मेरा खुद से आपका आपसे, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता। देखिए शराब तो नहीं पी होती अल्हम्दुलिल्लाह, नींद के नशे में भी हम नहीं होते, बेहोश भी नहीं होते। अभी जो जोहर पढ़ के बैठे, हर आयत पे समझ आ रहा था, जो सूरत पढ़ी समझ आई, इय्याका नअबुदु कहते हुए दिल में एकदम बंदगी का एहसास हुआ, अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ते हुए वाकई सारी कौली फैली माली बातें अल्लाह के लिए होने का तसव्वुर आया, रब्बी जालनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती पढ़ते हुए बाकी माँ बाप और बहन भाई याद आए, औलादें याद आई। तो फिर हम नशे के बगैर भी नमाज पढ़ते हैं तो हमें समझ कोई नहीं आती। आप उस उम्मत को क्या नाम देंगे, मैं उम्मत के लफ्ज को बदलती हूँ, आप उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे कि जो 15, 20, 25, 30 साल से एक इदारे में आ रहा है और उसको सिर्फ स्लोगन का मानी भी नहीं समझ आता। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए 6,000 से ज्यादा ये आयतें नाजिल की जो हम पढ़ रहे हैं अब अल्लाह के हुक्म से, 114 सूरतें, तकरीबन सफ़े देखे तो 1500-1600 सफ़ा बनता है कुरान का, ये सब एक साइड पे। क्या वो नमाज जो 5 वक्त हम पढ़ते हैं उसको समझते हैं? कितनों को पूरी नमाज का तर्जमा आता है और कितनों को आता है और नमाज के दौरान कंसंट्रेशन होती है? आप कहकर देखे मैंने अगली असर की नमाज पूरी सूरत में पढ़ दी है कि एक सेकंड के लिए मेरी तवज्जो इधर से उधर ना हो, आपके पसीने उतरने लगेंगे, आप फिर कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, किसी रुकू सजदे में आपकी सोच चली जाएगी शाम की इफ्तारी पे, कहीं आप शॉपिंग की लिस्ट बना रहे होंगे। ये तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इल्ला अल खाशीन कुमुलिल्लाहि कानितीन, नमाज है बड़ी बोझल मगर जिसके लिए अल्लाह आसान करे। तो आज से अपनी नमाजों पे नजर डालें, रमजान भी है, कुरान भी है, नमाज सीधी हो गई, उम्मत का नेविगेशन सीधा हो जाएगा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। फिर कब नमाज की तरफ नहीं जाना, एक तो नशे की सूरत में नहीं जाना था, दूसरा वला जुनूबन, हाँ इसी तरह जुनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुसल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरने वाले हो, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए या तुमने औरतों से लम्स किया हो और फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों और हाथों को मसह करो, बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। ये अहकामात नमाज से मुतल्लिक है, बड़े अहम हैं। मैं इंशाल्लाह अपने साथियों से उम्मीद करूंगी कि वो आपको आज की ईमेल में एक तो तयम्मुम के मसाइल का चैप्टर भेजें, इसी तरह से आप देखिए कि जो भी इसमें अहकामात है, वुजू का तरीका। आप देखिए ये सब सीखने की चीज़ें हैं। दिन में 5 बार काम करें और गलत करें। देखिए ना, एक औरत खाना पकाए जब पकाए गलत पकाए, रोटी पकाए जब जब पकाए जल जाए, कोई उसको अक्लमंद कहेगा कि बेवकूफ़? थोड़ा सा वक्त लगा के सीख लीजिए। तो नमाज को सीखना है इंशाल्लाह। नमाज के ऊपर बड़ी खूबसूरत बुक्स हैं, मुझे उम्मीद है आपके घरों में भी होंगी, आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह इसमें। और इसमें देखिए तहारत के कितने मसाइल हैं, शौहर बीवी के ताल्लुक के बाद जो गुस्ल होता है उसको फ़र्ज कहते हैं, उसके इतने अहकाम हैं। और हमारे कल्चर में खुद साख्ता क्या कुछ भरा हुआ है, और जो चीज़ें करने वाली होती हैं वो लोग नहीं करते। तो कम अज़ कम हम अपने लिए इन चीज़ों को आम करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोग फायदा उठाएंगे, और अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने वाला बना दे। फिर आगे कुछ बेकार बातें, टाइम वेस्टर्स में से एक टाइम वेस्टर इधर आपको दिखेगा, और वो क्या, अलम तरा इलल लज़ीना उतू नसीबा मिनल किताब यश्तरून अद्दलाला। तुमने इन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिन लोगों ने यहूदियत का तरीका इख्तियार किया, इनमें से कुछ लोग हैं जो अल्फाज को इनके महल से फेर देते हैं, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें पेश करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें पेश करते हैं, और दीन हक के खिलाफ नेशजनी करने के लिए, यानी उसके खिलाफ लोगों को करने के लिए अपनी जुबानों को मोड़ तोड़ कर कहते हैं, समेना व असईना वस्मा गैर मुस्मैन व रायना। आपको पहला पारा याद आ रहा है? कुछ बनी इसराइलियों की ऐसी आदतें थी कि जो अल्लाह के नबी सल्लम से बुग़्ज़ और हसद रखने की वजह से करते थे, उसी का जिक्र था। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। या अय्युहल्लज़ीना उतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिकन लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहा। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है। देखिए इसमें मोहब्बत को महसूस करें, मान लो ना, क्यों नहीं मानते, जिद क्यों करते हो, चिढ़ क्यों रखते हो? कौन सी किताब है ये? वो किताब जो इसकी तस्दीक और तायद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इस पर ही मान ले, और कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे कर दें, या इनको इसी तरह लानत सदा कर दें जिस तरह सब्त वालों को हमने किया। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहेगा। किताब को मान लो, जैसे गैर मुस्लिमों को हुक्म मिलता है ना, इस किताब को मानो। मुझे ऐसे लगता है आज मुसलमानों को भी यही पैगाम देने की जरूरत है। आज का मुसलमान किताब से बहुत डरता है, खुली किताब से डरता है, बंद किताब की बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कस्में भी खाते हैं, इसकी इज्जत भी करते हैं, बांटते भी हैं, खरीद के दूसरों को देते हैं, लेकिन इस कुरान को हाथ नहीं लगाते। हालांकि ये इतनी प्यारी किताब है। आप देखिए, सिर्फ हमने अभी 5वां पारा शुरू किया है, मैं कह सकती हूँ कि 5% दिल में खुदबुद शुरू हो चुकी है, अपनी खराबियाँ दिखती हैं, अपनी खामियाँ नजर आती हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि इस किताब को आम करने वालों में हमारा नाम आ जाए। अल्लाह बस शिरकी को माफ़ नहीं करता, इसके माँ सिवा जिस कदर गुनाह है, जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया, इसने तो बहुत बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। तुमने इन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, सेल्फ प्रेजिंग, खुद पसंद लोग। ऐसे लोग याद रखिए जो खुद को ही पसंद करते रहे, वो किसी दूसरे को पसंद नहीं करते। अल्लाह को ऐसे खुद पसंद लोग पसंद नहीं है। हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता, और इन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत इन पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठे इफ्तरा घड़ने से नहीं चूकते, और इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए एक गुनाह काफ़ी है। क्या पता चला कि जो झूठ बोलता है ना इंसानों पे, वो अल्लाह पे भी बोल देता है। अल्लाह ताला बचा कर रखे। अलम तरा इलल लज़ीन उतू नसीब मिनल किताब युमिनून बिज़्ज़ति वत्ताहूत। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया? इनका हाल यह कि जिब्त और तागूत को मानते हैं, और काफिरों के मुतल्लिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर है। हाईलाइट करें, आज मुसलमान भी जुमला बोलते हैं, कहते हैं आज मुसलमानों से काफिर अच्छे हैं। ये उस दौर के लोगों ने भी कहा, हालांकि मुसलमान से कोई दूसरा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत करते फिर इसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में इनका कुछ हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो वो दूसरों के टूटी कोड़ी तक ना देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इनको अपने फजल से नवाजा? अगर ये बात है तो इन्हें ये मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई इससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए बस भड़कती हुई आग ही काफी है। रात को मैंने जब फिर इस आयत को पढ़ा तो मैं मजबूर हो गई ये बात आज आपसे फिर कहने के लिए। मुसलसल पांचवा पारा है और हजरत इब्राहिम का जिक्र है, नाम जरूर है। इतना मुझे रश्क आया उन पे, इतना प्यार आया, मैंने कहा इब्राहिम आपको तो जिंदगी में तो पता नहीं लोग क्या कहते होंगे, किसी ने आपको मौलवी कहा होगा, किसी ने आपको पता नहीं क्या कुछ कहा होगा। तभी तो हिजरतें होती थी, तभी तो लोगों ने आग में डालने की कोशिशें की, लेकिन अल्लाह आपकी कितनी कदर करता है। कोई पारा ऐसा नहीं है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं आ रहा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बसर करके जाएं कि खैर में, अच्छी बातों में हमारा नाम आ जाए, अल्लाह हमें ज़ाया होने से बचा ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है उसको ऐसी खूबसूरत और क्वालिटी लाइफ बना दे कि हम उसमें बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, और आगे अल्लाह ताला हमारे बाद उसको हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। जिंदगियों को ज़ाया होने से बचाना है इंशाल्लाह, इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार कर दिया, इन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। आपको तो पता है कि जलने का सारा अजाब खाल पे होता है, स्किन जलती है ना दर्द होता है, क्योंकि फिर हड्डियां जलें तो उसका क्या तकलीफ है। जहन्नमियों को जहन्नम में इतनी तकलीफ होगी कि जब एक खाल जल जाएगी तो दोबारा नई खाल दी जाएगी, मुसलसल अजियत में होंगे। और इन अल्लाह कान अजीजन हकीमा, अल्लाह ताला बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की खूब हिकमत जानता है। तो ये दुआ कीजिए कि आज दुनिया में हम अपनी और दूसरों की फिक्र करें और आग से बच सकें। आप देखिए दुनिया में आग कितनी तकलीफ दह चीज़ है। बेटी काम कर रही हो किचन में, अल्लाह ना करे दुपट्टे को हल्की सी आग लग जाए, क्या कोई बाप देखता रहेगा? ये इसकी तो मैंने शादी कर दी, इसका शौहर ही आके इसको बुझाएगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह अपनी शादीशुदा बेटियों के भी दीन ईमान की फिक्र करना हमारा काम है। अपने बच्चों को उम्र के किसी हिस्से में न तनहा छोड़ें, बेटियां हैं कि बेटे हैं कि बच्चों वाले हैं कि शौहर वाले हैं, हमारा सबका काम क्या है कि खुद भी आग से बचें और दूसरों को बचाएं। और अगर गैर मुस्लिमों के नाते से देखें तो क्या मैं और आप चाहेंगे कि हमारी गफलत की वजह से कोई कुफर पे मर जाए, कोई इस्लाम से दूर होके मरे? तो फिर सारी बात का खुलासा, जिंदगी में कुछ काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।